من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أبلغكم رسالات ربي پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے وَأَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں امین اطمینان کے لائق ہوں. اس مبارک آیت میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے ساتھ ان کی قوم نے بے ادبی کی, ان کو نعوذ باللہ جھوٹا بھی کہا احمق بھی کہا, اس کے جواب میں آپ نے غصے کے بغیر صاف صاف بات کی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جی میں احمق نہیں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور اگلی بات آپ نے یہ کی ان کی تسلی کے لیے کہ جی جو تم میرے بارے میں اتنی زیادہ تمہارے ذہنوں میں ڈاؤٹس ہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم اطمینان میں آ جاؤ میرے معاملے میں, میں تمہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں. یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس میں میرا فائدہ نہیں ہے, تمہارے فائدے کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو کئی مرتبہ لوگوں کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دوسرا صرف ہمارا فائدہ سوچ رہا ہے, اپنا نہیں سوچ رہا ہے. تو معاشرہ کئی مرتبہ ایسا بن جاتا ہے نا کہ اس کے اندر سیلف سینٹرڈ سیلفش معاشرہ ہوتا ہے, لوگوں کو لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہا ہے, ہمارا فائدہ دیکھ رہا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ پیچھے ہوگا ضرور, لوگ یہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے تبھی وہ یہ آ کے ہمیں کہہ رہا ہے. تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ریلیکس کیا کہ اللہ کے بندے زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے اور میں آخرت کا فائدہ ضرور اپنا دیکھ رہا ہوں, یہ ضرور ہے, مگر تمہارے اصل تمہارا فائدہ دیکھ رہا ہوں. اگر تم میری بات سن لو گے تو تمہاری بھی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی, اس لیے میں تمہارے لیے ناصح, ناصح کہتے ہیں مخلص کو, خیر خواہ کو, اور امین ہوں, امین ہوں ان کو دلاسا دلا رہے تو اطمینان کر لو, تم ہر طرح سے اطمینان کر لو, تمہیں میں ایسا ہی نظر آؤں گا کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا فائدہ دیکھنا ہے. تو انہوں نے عقلی طور پہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ جی میرا فائدہ نہیں ہے, میں اگر میرا فائدہ یہ تمہارے فائدے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے اس میں تم اطمینان, اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا شروع کرو. اصل تو ان کو یہ کہا, اور یہ بہت بڑی شرط ہے دین کی دعوت دینے والے کے لیے کہ دین کی دعوت دینے والے کے لیے دعائیں بہت ہیں. اللہ کے نبی نے دعائیں کی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیر جما دیں گے جو دین کا کام کرے گا. تو من جو دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیر جما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آسانی کر دیتے ہیں, بہت زیادہ اس کے ساتھ مہربانی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین کی دعوت دینے کا کام کرے گا آخری بندہ جو ہے آخری بندے تک اس سب کے ساتھ میری دعائیں ہیں. تو بڑا مقام ہے, بڑا سب کچھ ہے, مگر اس سارے کے لیے, یہ ساری نعمتیں پانے کے لیے جو دین کی دعوت دینے والا ہے اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے, कोई और गरज ना हो सिवाय कि अल्लाह को राजी करना है। ये ना हो कि जी दीन की दावत देने के जरिए से मैं जरा शोहरत कमा लूं, या अगर थोड़े अमीर लोगों को दावत दूंगा तो मैं जरा दौलत कमा लूं, या इसके जरिए से चलो मैं कोई और कर लूं। तो बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे इंसान के और भी काम निकल आ सकते हैं। इन सारे कामों को हटाना है कि बस सिर्फ अल्लाह के लिए। तो जब सिर्फ अल्लाह के लिए होगा तो इंसान फिर ये सारे फायदे हासिल करेगा। इसलिए इखलास के साथ दावत देंगे तो अंबिया के रास्ते पे, और अगर बहुत सारे गर्ज हैं और इखलास नहीं है, या दिखलावा है, या कोई और मकसद है, या दुनिया कमाना मकसद है, तो फिर ना तो उसका कोई फायदा, ना उस पे अजर मिलेगा, ना ये दावत दूसरों पे असर करेगी। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को ये समझाया कि भाई मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तुम मुझे नहीं मानोगे तो भी करता रहूंगा। जब इंसान अल्लाह के लिए कर रहा होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि अच्छा 1 लाख बंदे ने मेरी बात सुनी, 1 करोड़ ने सुनी, या बस 2 बंदों ने मेरी बात सुनी। पूरी जिंदगी दीन की दावत देते रहे और 2 बंदों ने बात सुनी, मगर पूरी जिंदगी दीन की दावत देने का अजर मिलता रहेगा, अंबिया के रास्ते वाले बंदा कहलाएगा। और अगर पूरी दुनिया में आपके लाखों करोड़ों शागिर्द बन गए पूरी जिंदगी में, मगर पीछे नीयत सही नहीं थी, वो लाखों करोड़ों शागिर्द भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इखलास जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने इबादत की दिखलावे के लिए उसने शिर्क किया, अल्लाह अकबर, तो छोटी चीज नहीं। इसी तरह आपने फरमाया दीन नसीहा, दीन खैरखाही है, यानी दीन इखलास है, सच्चे दिल से दूसरे का फायदा इंसान देखे, ये दीन है। और ये सीखने वाली चीज है, ये दिल का बदलना है। जो बुजुर्गों ने दुआ की ना, खुदाया रहम फरमा, दिल बदल दे, ये दिल का बदलना है कि इंसान सबके लिए अपने दिल को नरम कर ले, हर एक की वाकई खैर चाहे, हर एक का मुखलिस हो, ये असल दीन है। ये नहीं तो भी दीन से दूरी है, चाहे जाहिरी वजाकता कितनी ही नेकी वाली क्यों ना हो। तो इस दिल को बदलना है, इस दिल में इखलास पैदा करना ये जरूरी है। मुखलिस बंदा कौन है, ये बड़ा सवाल है। और मुखलिस बंदों की 5 निशानियां मशायख ने बताई हैं, और उन 5 निशानियों को आज की इस क्लास में सामने रखना जरूरी है। सबसे पहली निशानी मुखलिस बंदे की ये है कि दीन का बड़ा काम हो, दीन का छोटा काम हो, वो दोनों को इक्वल वैल्यू देगा। ये नहीं कि अच्छा ठीक है, अगर तो मैं बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोगों को, अगर कोई बंदा दीन समझता है, तफसीर जानता है, या कोई और हदीस जानता है, या कोई चीज दीन की सिखानी है, वो कहेंगे जी बड़े क्वालिफाइड किस्म के हाई लेवल लोग होंगे तो मैं जाऊंगा उनके पास। और अगर आम से जी बहुत ही निचले तबके के लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो फिर मेरी माजरत है। इसका मतलब है ये इखलास नहीं है, यानी दीन पहुंचाने की जो सही मुखलिस होना जो है वो मौजूद नहीं है। या कई मर्तबा होता है कि इंसान कहता है कि जी मैं कभी कोई हाई लेवल चीज पढ़ाऊंगा, बहुत ही जैसे तफसीर पढ़ाऊंगा या हदीस पढ़ाऊंगा, अगर कायदा नहीं पढ़ाऊंगा, कायदा तो छोटे लोग पढ़ाते हैं ना। हमारे मुल्क के एक बुजुर्ग गुजरे साईं अब्दुल करीम बेर शरीफ वाले, सिंध के बड़े बुजुर्ग, पिछले रीसेंट पास्ट में गुजरे हैं। और ये जो बुजुर्ग थे वो फरमाते थे मेरे नजदीक दीन का आलिम चाहे नूरानी कायदा पढ़ाए, अलिफ बे पे पढ़ाए, या बुखारी शरीफ की बहुत ही अहम बहस पढ़ाए, दोनों मेरे नजदीक बराबर हैं। बल्कि अगर इखलास से कायदा पढ़ाया तो ज्यादा अजर है, और इखलास के बगैर बुखारी शरीफ पढ़ा ली तो वो कम अजर है। तो मुखलिस बंदे की निशानी ये होगी कि बड़ा काम करे दीन का या छोटा काम करे, दोनों को उसी जज्बे के साथ करे, उसी शौक के साथ करे। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कई मरतबा दीन सीखने के लिए, दीन की बात सुनने के लिए दो बंदे सिर्फ आते हैं, और कई मरतबा 2,000 20,000 बंदे इतने आ जाते हैं। तो फरमाते हैं दो बंदों को भी उसी तरह दीन सिखाता है जैसे 20,000 बंदों को सिखाना होता है, कि हो सकता है कि इन दो बंदों को सिखाने पे वो अजर मिल जाए जो शायद 20,000 बंदों को सिखाने पे काबिल है। तो मुखलिस बंदे की निशानी है कि दीन का छोटा काम हो दीन का बड़ा काम हो, शौक से करेगा दोनों। और मुखलिस बंदे की दूसरी निशानी ये है कि वो अपने कामों को छुपाएगा, मशहूरी का शौकीन नहीं होगा, छुपाने की कोशिश करेगा। और सहाबा कराम अपनी नेकियों को छुपाने के माहिर थे, अल्लाह अकबर। चुनाचे हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह उन्होंने एक जगह जिहाद की, और वो जिहाद के सिपे सालार उस वक्त थे। तो जब जिहाद मुकम्मल हुआ और बहुत सारा माल गनीमत आया और बहुत सारा माल पड़ा था, तो एक आदमी आया और उसके चेहरे के ऊपर भी कपड़ा था, यानी उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, और उसके हाथ में एक चीज थी जो कपड़े में रैप्ड थी, वो नजर भी नहीं आ रही थी कि वो चीज क्या है। तो माल गनीमत मिलने के ये अगले दिन या दो दिन बाद ये शख्स आया और उसने आके वो जो चीज थी वो आके सामने रख दी और कहा कि जी ये भी ले लें, इसको भी माल गनीमत में शामिल कर लें। ये कह के वो चले गया, ना उसका चेहरा कोई देख सकता था, ना पता चला कि ये शख्स कौन है। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती थी। ये देख के जब वो गया तो पीछे से जो है, जब हजरत साद बिन अबी वकास ने उस कपड़े को खोला तो उसमें जो काफिरों के बादशाह के सर का ताज था वो था, और आम ताज नहीं था, इतने हीरे और इतना सोना, इतनी महंगी तरीन चीज, जितना माल गनीमत पड़ा था उससे कई गुना ज्यादा महंगा ये चीज थी। और हजरत साद के जहन में आया कि अगर ये बंदा रख भी लेता, हमें ना भी बताता, इसकी तो 10 नस्लें खाती रहती, ये खत्म ना होता, इतना इसके अंदर सोना और हीरे लगे हुए हैं, मगर इसका इखलास देखो किसने आके जमा करवा दिया। और उन्होंने ये भी सोचा कि उसने अपना ना तो नाम बताया ना चेहरा दिखाया, तो अभी वो जा ही रहा था तो आपने आवाज लगाया, अरे नौजवान मेरी बात तो सुन, तू कौन है, अपना नाम तो बता। इतना जो महंगा तरीन माल गनीमत की चीज जो यहां छोड़ गया। तो उस आदमी ने, ये जो इखलास का एक्सपर्ट था, इसने जवाब दिया कि हजरत मेरा नाम मेरा मालिक बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसके लिए मैंने ये अमल किया है आपको नहीं बता सकता। ये कह के रवाना, साथ फरमाते ना मुझे पता चल सका कि वो कौन है, ना उसका नाम पता चल सका। तो मुखलिस बंदे की निशानी वो नेकी करेगा और छुपाएगा। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन 7 लोगों को अर्श का साया मिलेगा, उसमें से एक शख्स वो होगा जो दूसरों को सदका, दूसरों की मदद ऐसा करता होगा कि दाएं हाथ से मदद करता होगा तो उसके अपने बाएं हाथ को भी नहीं पता चलेगा। तो ये कयामत के दिन के स्पेशल गेस्ट में से होगा। अरबों लोग देख के कहेंगे कि ये कौन लोग हैं जो अल्लाह जिन पे इतने मेहरबान है, अल्लाह के खास मेहमान आए हुए, हम सब धूप में परेशान हैं, हम सब परेशानी में, और ये चीफ गेस्ट की तरह अल्लाह के अर्श के साए में। तो उसमें से एक वो होगा जो छुप के सदका करता होगा। तो मुखलिस बंदे की 5 बड़ी निशानियां, पहला ये कि छोटा काम दीन का हो या बड़ा काम दीन का हो, इक्वल शौक के साथ करते हैं। और दूसरी निशानी कि अपने नेकी को छुपाते हैं। तीसरी निशानी मुखलिस बंदे की, सिंसियर बंदे की, वो ये है कि वो दूसरों के अच्छे कामों की ताईद करते हैं। कि ऐसा नहीं कि जी खुद भी कोई काम दीनी कर रहे हैं और दूसरा भी कोई दीन का काम कर रहा है तो हमेशा उसको नेगेटिव शो करना, या दीन का भी नहीं तो भी अननेसेसरीली दूसरों को नेगेटिव पोर्ट्रे करना, ऐसा करने वाला बंदा मुखलिस नहीं है। बल्कि मुखलिस शख्स वो है कि वो दूसरों के अच्छे कामों की हमेशा ताईद करेंगे। और दूसरा अगर आपका मुखालिफ भी है तो भी ऐसा नहीं कि उसके अच्छे काम को भी बुरा करके प्रेजेंट किया जाए, जैसे सियासत में होता है ना, अगर किसी सियासी पार्टी ने कोई अच्छा काम कर भी लिया है तो मुखालिफ ने उसमें से कीड़ा निकालना, उसको खराब कहना ही है। नेक इंसान, सिंसियर इंसान जो है वो अच्छे काम को अच्छा ही कहेगा, चाहे दुनिया उसको जो कुछ कहते रहे। चुनाचे मशहूर वाक्या है कि हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो बड़े बुजुर्ग एक ही वक्त में गुजरे हैं। दोनों बड़े अल्लाह वाले, दोनों आपस में एक ही मदरसे से पढ़े हुए, उनमें एक इख्तिलाफ आ गया और इख्तिलाफ जो है वो कयाम पाकिस्तान के वक्त आया और इख्तिलाफ बहुत शदीद। एक ग्रुप कहता था कि जी मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनना चाहिए और हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी फरमाते कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमेशा से मुसलमानों की हुक्मरानी रही है तो अलग नहीं बनाना चाहिए बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमान की हुक्मरानी होनी चाहिए। अंग्रेज बिल्कुल चले जाए मगर हम पूरे हिंदुस्तान पे मुसलमान काबिज होंगे। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट की खिलाफ थे और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान मूवमेंट के साथ थे। तो ये बहुत शदीद इख्तिलाफ था। दोनों बुजुर्ग थे, दोनों के पास हजारों लाखों लोग उनसे दीन सीखने आते थे, दोनों के पूरा हिंदुस्तान में बड़ा इन्फ्लुएंस था और दोनों क्लासमेट्स भी थे, एक ही जगह से दोनों पढ़े हुए थे। अब दोनों की तरबियत का अंदाज जो उनसे दीन सीखने आते थे वो मुख्तलिफ था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बहुत ही डिसिप्लिन था, रात को सोने का वक्त बिल्कुल मुतय्यन था कि जो उनसे दीन सीखने आता है अगर वो रात को जितने बजे जो टाइम फिक्स है उसके बाद जागेगा तो उसको बाहर निकाल दिया जाता था। सुबह उठने का वक्त मुतय्यन है, ज्यादा नींद भी नहीं, ज्यादा खाने की भी इजाजत नहीं, जिक्र भी जितना बताया जाएगा उतना करना है, बयान के वक्त पे पहले पहुंचना होगा। हत्ता के हजरत के स्केड्यूल के अंदर डांट का भी एक घंटा था, एक घंटा डांट का होगा जिसके अंदर बारी बारी सबको डांट पड़ेगी, कि डांट भी एक तरबियत का हिस्सा है। तो इतने डिसिप्लिन वहां था। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बहुत ही नरमी थी, जो जितने बजे सोना चाहे सो जाए, खाने बहुत लजीज बनते थे, हर थोड़ी देर बाद जिसको चाय चाहिए चाय मिल रही होती थी, कोई खानकाह पे आके बहुत जिक्र करना चाहे जिक्र करे, कोई नहीं भी करना चाहे बैठ के गप्पे लगाना चाहे लगाता रहे। हजरत भी कई मरतबा मजालिस में आके बैठ जाते और हंसी खुशी की बात भी फरमा लेते, नसीहत भी करते थे, बहुत ही नरम माहौल होता था, लोगों का बड़ा हुजूम रहता था वहां। हत्ता कि हजरत की नरमी का ये आलम था कि आने वाला जो सालिक है जो दीन सीखने के लिए आता उसको कई मरतबा ट्रेन स्टेशन ड्रॉप करने चले जाते और कई मरतबा अपने जेब से उसकी ट्रेन की टिकट भी अदा कर देते। तो एक तरफ इतना डिसिप्लिन और इतना ज्यादा स्केड्यूल और इतना ज्यादा सख्ती और दूसरी तरफ उतनी नरमी, हजरत की नरमी पे सारे फरेफ्ता। एक शख्स था जो पहले हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इस डिसिप्लिन वाली खानकाह से होके और हजरत मदनी की खानकाह में पहुंचे, दोनों जगह पे तो थोड़े दिन वहां रह के और फिर हजरत के पास आया, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। अब जब वहां गया तो इतना डिसिप्लिन, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, वक्त पे उठना, वक्त पे जिक्र, हजरत की मजलिस में बैठना ही है, कोई एक्स्ट्रा गुफ्तगू की इजाजत नहीं, डांट का भी एक घंटा खा के आना। तो जब उस खानकाह से हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में आया तो उसको तो ऐसा लग रहा है यहाँ तो याशी है, रात को जितने बजे भी सोना चाहो, पुर तकलीफ खाने हैं, जब जब चाय पीना चाहो, जब जब महफिल लगाना चाहो, तो उसने आखिरकार हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कह ही दिया कि हजरत वहां आया ना, वहां तो जरा भी मजा नहीं आया, आपके यहां बहुत मजा आया, दिल लग गया, दिल चाहता है इस खान का पे पड़े रहें। तो उसने ये कहा कि जी वहां इतनी नहीं, आज के जमाने में जो तरतीब आपने बनाई हुई वो अच्छी तरतीब है, लोग जुड़ते हैं इससे। तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को उसने ये कहा कि जी आपकी तरतीब अच्छी है, उनकी तरतीब अच्छी नहीं, उन्होंने बहुत सख्ती की हुई है। मगर हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह मुखलिस बंदे थे, उन्होंने कहा मियाँ डॉक्टर दो किस्म के होते हैं, इस्लाह करने वाले भी दो किस्म के होते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं ना दो किस्म के, कि एक वो डॉक्टर होता है जो छोटा डॉक्टर होता है, बस थोड़ी सी दवाइयां देता है और थोड़ा सा बस कहता है कि जी मसाज कर लें, ये कर लें, बस उसका इतना ही होता है, उसके से ज्यादा आता भी नहीं। एक होता है प्रॉपर सर्जन, और ये सर्जन जो होता है ये आपके अंदर के बड़े बड़े जो डिजीजेस होते हैं उसको काट कूट के निकाल देता है, वो असल डॉक्टर होता है और वो मशहूर होता है। उन्होंने कहा कि जी हमारा हाल जो है वो ये छोटे डॉक्टरों वाला है, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये सर्जन की तरह के डॉक्टर हैं जो इंसान के अंदर के बातनी अमराज को जड़ से निकाल देते हैं। तो इतनी सख्त इख्तिलाफ के बावजूद उन्होंने उनके अच्छे काम की मुखालफत नहीं की, ताईद की। ये मुखलिस बंदे की निशानी है। तो मुखलिस बंदे की निशानी ये है कि वो दूसरों के अच्छे कामों की ताईद करते हैं। चौथी और निशानी कि मुखलिस बंदा होगा अगर उसे कोई दीन की बात, कोई अच्छी बात अगर छोटों से भी मिल जाएगी तो छोटों से भी सीख। अपने ही अगर किसी स्कूल का प्रिंसिपल है और किसी टीचर ने कोई अच्छी बात कर ली, किसी छोटे ने अच्छा मशवरा दे दिया, तो ये नहीं कि जी मैं बड़ा हूं मशवरा मेरा ही चलेगा, नहीं, वो छोटों से भी सीखने के लिए तैयार। तो ये चार निशानियां बयान की गई हैं, और पांचवें में जो क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है वो इसलिए कि जिस वक्त नोट्स बना रहा था तो पांचवा याद नहीं आ रहा था, ये पांचवा इंशाल्लाह अगली क्लास को जब रिकैप करेंगे तो मैं उस वक्त तक लेके आ जाऊंगा। अल्लाह ताला बहुत जजाए खैर अता फरमाए। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है, या जिस एक मरतबा फिर तर्जमा करता है, आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, पहुंचाता हूँ तुमको पैगाम अपने रब के, व अना लकुम नासिहुन, और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा मुखलिस हूँ, अमीन हूँ, इत्मीनान के लायक हूँ। यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। तालिबात मुराकबा आज हम स्किप करेंगे, इस आजिज ने कहीं जाना है तो बस दुआ कर लेते हैं, तालिबात दुआ के लिए हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया इबल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिरा व कल्बन खाशिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअ मिन कुल्ली दा। صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.